श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद अध्याय 24 भगवान श्री कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता द्वारा लाई गई उस लड़की के गर्भ से विदर्भ को 3 पुत्र प्राप्त हुए, कुश, क्रत तथा रोमपाद। रोमपाद विदर्भ कुल का अत्यंत प्रिय था। रोमपाद का पुत्र भृगु हुआ, जिससे कृति नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कृति का पुत्र कौशिक हुआ और कौशिक का पुत्र चेदी था। चेदी से वैद्य तथा अन्य राजा पुत्र उत्पन्न हुए। क्रत का पुत्र कुंती, कुंती का पुत्र वृषणी, वृषणी का निवृत्ति, निवृत्ति का दशारह, दशारह का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ तथा नवरथ का पुत्र दशरथ हुआ। दशरथ का पुत्र शकुनी हुआ और शकुनी का पुत्र करम्बी था। करम्बी का पुत्र देवरात हुआ, जिसका पुत्र देवशत्र था। देवशत्र का पुत्र मधु था और उसका पुत्र पुरुवश था, जिसके अनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अनु का पुत्र पुरुहोत्र हुआ, जिसके पुत्र आयु का पुत्र सातवत था। ये महान आर्य राजा सातवत के 7 पुत्र थे, भजमान, भजी, दिव्य, वृषणी, देवावृत, अंधक तथा महाबोज। भजमान की एक पत्नी से निम्नलोची, किंकर तथा दृष्टि नामक 3 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से शताजित, सहस्त्राजित तथा अयुताजित, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देवावृत का पुत्र बब्रू था। देवावृत तथा बब्रू से संबंधित 2 प्रसिद्ध प्रार्थनामय गीत हैं, जिन्हें हमारे पूर्वज गाते रहे हैं और जिन्हें हमने दूर से सुना है। आज भी मैं वही गीत उनके गुणों के विषय में सुनता हूँ, क्योंकि जो पहले सुना गया है अभी भी लगातार गाया जाता है। यह तय हुआ कि मनुष्यों में प्रभु सर्वश्रेष्ठ है और देवावृत देवता तुल्य है। प्रभु तथा देवावृत की संगति से उनके सारे वंशज, जिनकी संख्या 14,065 थी, मोक्ष के भागी हुए। राजा महाबोज अत्यंत धर्मात्मा था और उसके कुल में बोज राजा गण हुए हैं। हे शत्रुओं के दमन करने वाले राजा परीक्षित, वृषणी के पुत्र सुमित्र तथा युधाजित थे। युधाजित से शिनी तथा अनमित्र उत्पन्न हुए। अनमित्र के एक पुत्र था, जिसका नाम निघ्न था। निघ्न के 2 पुत्र हुए, सत्राजित तथा प्रसेन। अनमित्र का दूसरा पुत्र एक अन्य शिनी था, जिसका पुत्र सत्यक था। सत्यक का पुत्र युयुधान था, जिसका पुत्र जय हुआ। जय के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुणी था। कुणी का पुत्र युगंधर था। अनमित्र का दूसरा पुत्र वृषणी था। वृषणी से श्वफल तथा चित्ररथ नाम के 2 पुत्र हुए। श्वफल्क की पत्नी गांधिनी से अक्रूर उत्पन्न हुआ। अक्रूर सबसे बड़ा था, किंतु उसके अतिरिक्त 12 पुत्र और थे, जो सभी विख्यात थे। इन 12 के नाम थे आसंग, तारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुधन, गंधमाद तथा प्रतिबाहु। इन भाइयों के एक बहन भी थी, जिसका नाम सुचारा था। अक्रूर के दो पुत्र हुए जिनके नाम देववान तथा उपदेव थे। चित्ररथ के पृथु, विदुरथ इत्यादि कई पुत्र थे। ये सभी वृष्णि वंशी कहलाए। अंधक के चार पुत्र हुए, कुकुर, बजमान, शुचि तथा कंबल बरही। कुकुर का पुत्र वल्ही था और वल्ही का पुत्र विलोमा हुआ। विलोमा का पुत्र कपोत रोमा था, जिसका पुत्र अनु हुआ और उसका मित्र तुम्बुरु था। अनु से अंधक का जन्म हुआ, अंधक से दुंदुबी, दुंदुबी से अभिद्योत और अभिद्योत से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुनर्वसु के एक पुत्र आहुक तथा एक पुत्री आहुकी थी। आहुक के दो पुत्र थे, देवक तथा उग्रसेन। देवक के चार पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव तथा देववर्धन। उसके साथ कन्याएं भी थी, जिनके नाम शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी तथा धृत देवा थे। इनमें धृत देवा सबसे बड़ी थी। कृष्ण के पिता वसुदेव ने इन सबों के साथ विवाह किया। उग्रसेन के पुत्रों के नाम थे, कंस, सुनामा, नयग्रोध, कंस, शंकु, तुहु, राष्ट्रपाल, दृष्टि तथा तुष्टिमान। उग्रसेन की पुत्रियां कंसा, कंसावती, कंका, शुरबु तथा राष्ट्रपालिका थी। वे वसुदेव के छोटे भाइयों की पत्नियां बनी। चित्ररथ का पुत्र विदुरथ था, जिसका पुत्र शूर था और शूर का पुत्र बजमान था। बजमान का पुत्र छिनी हुआ, छिनी का पुत्र बोझ था और बोझ का पुत्र हृदीक था। हृदीक के तीन पुत्र हुए, देवमीड, शतधनु तथा कृतवर्मा। देवमीड का पुत्र शूर था, जिसकी पत्नी का नाम मारीशा था। राजा शूर को अपनी पत्नी मारीशा से वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, श्रृंजय, श्यामक, कंस, शमीक, वत्सक तथा वृक्क नामक 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ये विशुद्ध पवित्र पुरुष थे। जब वसुदेव का जन्म हुआ था तो देवताओं ने स्वर्ग से दुंदुबियां बजाई थी, इसीलिए वसुदेव का नाम आनक दुंदुबी पड़ गया। इन्होंने भगवान कृष्ण के प्राकट्य के लिए समुचित स्थान प्रदान किया। शूर के 5 कन्याएं भी जन्मी, जिनके नाम थे प्रिथा, श्रुत देवा, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा तथा राजादी देवी। ये वसुदेव की बहने थी। शूर ने अपने मित्र कुंती को अपनी पुत्री प्रिथा दे दी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए प्रिथा का दूसरा नाम कुंती था। एक बार जब दुर्वासा प्रिथा के पिता कुंती के घर पर अतिथि बने, तो प्रिथा ने अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न कर लिया। अतएव उसे ऐसी योग शक्ति प्राप्त हुई, जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। पवित्र कुंती ने इस योग शक्ति के प्रभाव की परीक्षा करने के लिए तुरंत ही सूर्य देव का आवाहन किया। ज्यों ही कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया, वे तुरंत उसके समक्ष प्रकट हो गए। इस पर वह अत्यधिक चकित हो गई। उसने सूर्य देव से कहा, मैं तो इस योग शक्ति के प्रभाव की परीक्षा ही कर रही थी। खेद है कि मैंने आपको व्यर्थ ही बुलाया है, कृपया वापस जाएं और मुझे क्षमा कर दें। सूर्य देव ने कहा, हे सुंदरी प्रिथा, देवताओं से तुम्हारी भेंट व्यर्थ नहीं जा सकती। अतएव मैं तुम्हारे गर्भ में वीर्य स्थापित करता हूँ, जिससे तुम एक पुत्र उत्पन्न कर सको। मैं तुम्हारे कुमार्य को अक्षत रखने की व्यवस्था कर दूंगा, क्योंकि तुम अब भी अविवाहिता लड़की हो। यह कहकर सूर्य देव ने पिता के गर्भ में अपना वीर्य स्थापित किया और वे स्वर्ग लोक वापस चले गए। उसके तुरंत बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो दूसरे सूर्य की तरह था। क्योंकि कुंती लोगों की आलोचनाओं से भयभीत थी, अतएव उसे बड़ी कठिनाई से पुत्र स्नेह छोड़ना पड़ा। अनचाहे उसने बालक को एक मंजूषा टोकरी में बंद करके नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। हे महाराज परीक्षित, बाद में पवित्र तथा पराक्रमी तुम्हारे बाबा पांडु ने कुंती से विवाह कर लिया। पुरुष के राजा वृद्ध शर्मा ने कुंती की बहन श्रुत देवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से दंत वक्र उत्पन्न हुआ। सनकादि मुनियों से शापित होने के कारण दंत वक्र पूर्व जन्म में दिति के पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ था। केकयराज दृष्टकेतु ने कुंती की अन्य बहिन श्रुत कीर्ति के साथ विवाह किया। श्रुत कीर्ति के संतर्धन इत्यादि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। कुंती की एक अन्य बहन राजादि देवी के गर्भ से जयसेन ने विंद तथा अनुविंद नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार चेदी राज्य के राजा दमघोष ने श्रुत श्रवा से विवाह किया। श्रुत श्रवा का पुत्र शिशुपाल था, जिसके जन्म का वर्णन पहले ही श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में किया जा चुका है। वसुदेव के भाई देव भाग की पत्नी कंसा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे चित्रकेतु तथा बृहद्वल। वसुदेव के भाई देव श्रवा ने कंसावती से विवाह किया, जिसने सुवीर तथा इशुमान 2 पुत्रों को जन्म दिया। कंक को अपनी पत्नी कंका से 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे बक्स, सत्यजीत तथा पुरुजीत। राजा त्रिंजय के उसकी पत्नी राष्ट्रपालिका से वृष, दुर्मशण इत्यादि पुत्र हुए। राजा श्यामक के उसकी पत्नी शूर भूमि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे हरिकेश तथा हिरण्याक्ष। तत्पश्चात राजा वत्सक की पत्नी मिश्र केशी नाम की अप्सरा से वृक इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। वृक की पत्नी दुर्वाक्षी ने तक्षक, पुष्कर, शाल इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। समीप की पत्नी सुधामिनी ने अपने गर्भ से सुमित्र, अर्जुन पाल तथा अन्य पुत्रों को जन्म दिया। राजा आनक ने अपनी पत्नी कर्णिका के गर्भ से ऋतधामा तथा जय नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। देवकी, पौर्वी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि आनक दुंदुबी वसुदेव की पत्नियां थी। इनमें देवकी प्रमुख थी। वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत तथा अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया। पौर्वी के गर्भ से 12 पुत्र हुए, जिनमें भूत, सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद तथा भद्र के नाम आते हैं। मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद, कृतक, शूर इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या भद्रा ने केवल 1 पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम था केशी। वसुदेव ने रोचना नामक पत्नी से हस्त, हेमांगद इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया और इला नामक पत्नी से उरुवल्क इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया जो यदुवंश के प्रधान पुरुष थे। धृत देवा पत्नी के गर्भ से आनक दुंदुबी वसुदेव को विपृष्ट नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव की दूसरी पत्नी शांति देवा के गर्भ से प्रशम, प्रसित इत्यादि पुत्रों ने जन्म लिया। वसुदेव के उपदेवा नामक पत्नी थी जिससे राजन्य, कल्प, वर्ष इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। अन्य पत्नी श्री देवा से वसु, हंस, सुवंश इत्यादि 6 पुत्र जन्मे। वसुदेव के वीर्य एवं देव रक्षिता के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें गदा प्रमुख था। साक्षात धर्म स्वरूप वसुदेव की अन्य पत्नी सहदेवा के गर्भ से श्रुत, प्रवर इत्यादि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। सहदेवा से उत्पन्न प्रवर और श्रुत इत्यादि 8 पुत्र स्वर्ग के 8 वसुओं के हूबहू अवतार थे। वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, रजु, सम्मर्दन, भद्र तथा शेषावतार संकर्षण सम्मिलित हैं। 8वें पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण थे। परम सौभाग्यवती सुभद्रा एकमात्र कन्या तुम्हारी दादी थी। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। हे महाराज परीक्षित, भगवान के प्राकट्य तिरोधान या कर्मों का एकमात्र कारण उनकी निजी इच्छा है, कोई अन्य कारण नहीं है। परमात्मा रूप में वे सर्वज्ञ हैं, फल स्वरूप ऐसा कोई कारण नहीं जो उन्हें प्रभावित करता हो, यहाँ तक कि सकाम कर्मों के फल भी नहीं। भगवान अपनी माया के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं जिससे वे अपनी दया से जीव का उद्धार कर सके और जीव के जन्म, मृत्यु तथा भौतिक जीवन की अवधि को रोक सके। इस तरह वे जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। यद्यपि सरकार हथियाने वाले असुर गण सरकारी व्यक्तियों जैसा वेश बनाए रहते हैं किंतु उन्हें सरकार के कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। फलस्वरूप ईश्वर की व्यवस्था से ऐसे बड़े बड़े सैन्य शक्ति संपन्न असुर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं और इस तरह पृथ्वी की सतह से असुरों का भारी बोझ घटता है। ये असुर भगवान की इच्छा से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं जिससे उनकी संख्या घट जाए और भक्तों को कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने संकर्षण बलराम के सहयोग से ऐसे कार्यकलाप कर दिखलाए जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे पुरुषों की भी समझ के परे हैं। उदाहरणार्थ कृष्ण ने सारे संसार को राक्षसों से छुटकारा दिलाने के लिए, असुरों का वध करने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध की आयोजना की। भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतुकी कृपा दर्शाने के लिए इस तरह से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य संसार के सारे शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में उन्होंने इस तरह कार्य किया जिससे सारे भावी भक्त जन भगवद गीता में कथित कृष्ण भावना अमृत के उपदेशों को ग्रहण करके संसार के कष्टों से छुटकारा पा सकें। शुद्ध हुए दिव्य कानों से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं एवं सकाम कर्मों की संलग्नता से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भोज, वृषणी, अंधक, मधु, शूरसेन, दशारह, कुरु, त्रिंजय तथा पांडु के वंशजों की सहायता से विविध कार्यकलाप संपन्न किए। अपनी मोहक मुस्कान, अपने स्नेहिल आचरण, अपने उपदेशों और गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी अलौकिक लीलाओं के द्वारा भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर सारे मानव समाज को प्रमुदित किया। कृष्ण का मुखमंडल मकराकृति के कुंडलों से सुसज्जित है, उनके कान सुंदर हैं, उनके गाल चमकीले हैं और उनकी हंसी हर एक को आकृष्ट करने वाली है। जो भी कृष्ण का दर्शन करता है मानो उत्सव देख रहा हो। उनका मुख तथा शरीर देखने में हर एक को पूर्णतया तुष्ट करने वाले हैं। लेकिन भक्तगण सत्रष्टा से क्रुद्ध हैं कि उन्होंने भक्तों की आंखों के झपकने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और फिर द्वारका लौट गए, जहां उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार अनेक श्रेष्ठतम स्त्रियों के साथ विवाह किए, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अपनी ही पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच मन मुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे आसुरी राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजयी घोषित किया। अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन तथा भक्ति के विषय में उपदेश देकर अपने आदि रूप में अपने धाम को वापस चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवे स्कंध के अंतर्गत भगवान कृष्ण नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।